جزاكم الله.
Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو ہماری آخری کلاس اس سلسلے کی صحابہ کرام کی سیرت پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس میں ہم عشرہ مبشرہ صحابہ کے احوال پڑھ رہی ہیں، جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا تھا. تو سعادت ان کے بارے میں آخری بات کسی کو یاد ہے تو وہ ہمیں بھی یاد دلا دے. میں یاد نہیں، آخری بات کیا کریں، کسی کو یاد؟ جی ہاں، خیر خواہی اور بدخواہی والی بات چل رہی تھی. صحیح صحیح. تو وہ والی حدیث کے نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی 3 مرتبہ ان کی غیر موجودگی میں، کیونکہ وہ تو ابھی تک انٹر نہیں ہوئے تھے. فرمایا کہ جو اب انٹر ہوگا وہ جنتی ہے. تو جب 3 دفعہ ایسا ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تجسس ہوا کہ بھائی کیوں. ٹھیک ہے، تو یہ تجسس جو تھا یہ بہت اچھا تجسس تھا. تو کبھی اچھی چیزوں کے لیے تجسس جو ہے نا، یعنی تجسس کبھی اچھی چیزوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور وہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور خامخواہ بیکار کی باتوں کے لیے تجسس کرنا یہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو پھر یہ بات آگے بڑھی تھی کہ انہوں نے 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری، لیکن ان کو کوئی ایسا عمل نہیں نظر آیا کہ جس سے کہ وہ دوسروں سے مختلف نظر آتے ہوں، بالکل کوئی اسپیشل قسم کی چیز، نہ تو کوئی ایسی عبادتیں ان کو ایسی نظر آئیں، نہ ان کو اور کوئی عجیب معلم جانے مشکل آگے پاکستان سے ایسا کوئی معاملہ نظر آیا کہ جیسے ان سے کرامتیں صادر ہو. آج کل یہ بڑا موضوع چل رہا ہے ہمارے یہاں آج کل، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ کوئی ان سے کرامتیں صادر ہو رہی ہیں، کوئی روشنی آتی ہے ان کے گھر کے اندر، کوئی ایسا ہو جاتا ہے. تو اب یہ 3 دفعہ ان کو جنت کی بشارت نبی علیہ السلام نے کیوں دی؟ تو اس کا بہت سادہ سا جواب انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو اپنی کوئی نظر ہی نہیں آتی ایسی بات، آپ نے بھی دیکھ لیا مجھے، تو میں ایسے ہی ہوں جیسا آپ کو نظر آ رہا ہوں، لیکن ایک بات جو میرے دل کے اندر ہے نا، تو وہ تو میں جانتا ہوں کہ میرے دل کے اندر کیا ہے. اب وہ یہ ہے کہ میں کسی کے بارے میں بدخواہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کسی کا برا نہیں سوچتا. یہ نہیں کہ کوئی برا ہے تو میں اس کو برا نہیں کہتا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مطلب یہ ہے کہ میں کسی کے لیے بری چیز چاہتا نہیں ہوں کہ اس کو یہ نقصان پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اس کو یہ تکلیف ہو جائے، اس کا یہ نقصان ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسا میں کسی کے ساتھ نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں دل میں ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی ہی رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو شاید یہی وجہ ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے مجھے جنت کا حقدار قرار دیا یا کہا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ کیا ہے، ہر انسان کے اختیار میں ہے. رائٹ، یہ کیا چیز ہے کہ ایوری ون کین ڈو دس، ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اپنے دل کو صاف کرے، دل میں کسی کے لیے بدخواہی نہ رکھے. ٹھیک ہے، اٹس اچیویبل فار آل آف اس. ٹھیک ہے، بس ہے کہ اگر کسی کے بارے میں گندا خیال آ رہا ہے، برا خیال آ رہا ہے، تو اللہ معاف کر دیجئے، یہ غلط بات ہے، فوراً ہی دلی دل میں استغفار پڑھنا شروع کر دیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنی غلط بات ہے، میرا دل ان جذبات سے گندا ہو جائے گا، اور یہ گندا دل جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے دل کے اوپر پھر رحمت کی نظر کیوں ڈالیں گے، جب میں نے اپنے دل کے اندر ایسی جذبات لوگوں کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں رکھے ہوئے. تو اب جو ہے وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض آئیں گے، اور مرنے کے بعد پھر الْيَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، کہ جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ جو ہے وہ فیملی، نہ بیٹے کوئی کام آئیں گے، बल्कि इल्ला मन अतल्लाहा बेकल्बिन सलीम, सिवाय उसके जो के सलीम अंकल वाला दिल लेकर के आया है, अंकल सलीम वाला दिल लेकर के आया, जिसका दिल जो है ना वो गंदा नहीं होता, ठीक है, तो वो अल्लाह के यहाँ कामयाब हो जाएगा। तो इस तरह से बंदा सोचे, हमारा कुरान अज़ीमुश्शान हमें यही सिखाता है, हमारा दीन यही सिखाता है। अच्छा, फिर जो है वो शेब अरबी तालिब के हालात हजरत ने फरमाए थे इस अपने बयान में सुल्तान के बारे में, कि जब कुरैश के लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ मुआशी बायकॉट किया, तो नबी अलैहिस्सलाम 3 साल तक शेबे अबी तालिब में महसूर रहे। ये शेबे अबी तालिब किसी को पता है आजकल ये कौन सी वाली जगह बनती है, वहां पर कहाँ पर है ये?
ये सुपा होटल के और जो पहले से हो जाए साइड पे बदल दिएगा टैक्सी जो है
जहां से टैक्सीज वगैरह चलती हैं, सफा होटल तो नहीं,
नहीं,
सफा सफा
क्या
मरवा,
हम लोग सुपा मरवा से निकलते हैं तो
हाँ
वहां से जब निकलते तो पैलेस वाली साइड आती है वहां तो
जो पैलेस वाली साइड के पीछे की तरफ है,
जी
अब
पीछे
चले जाए ना
तो
वहां पर, तो वो शेबे अभी तालिब वाला मुकाम है, ठीक है। तो 3 साल तक नबी अलैहिस्सलाम अपने घरों से, हालांकि घर कितना बहुत दूर तो नहीं था, हम लोग तो उम्रा करने जाते हैं तो हम इससे 10 गुना ज्यादा चल लेते हैं, ठीक है, इतने करीब करीब अपने जाती घर थे, लेकिन क्या कंडीशन पैदा हो गई होगी हम सोच नहीं सकते। कि जैसे आप यहाँ पे रह रहे हैं ना माशाल्लाह, किसी कुछ लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं, कुछ लोग बराबर वाली बिल्डिंग में रहते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं, ठीक है, लेकिन सब अपने घरों को छोड़ करके कोने में पार्किंग लॉट देखा है, खाली पार्किंग लॉट जो है, ठीक है, वो पैनोरामा शॉपिंग मॉल के इस तरफ, तो अब सारे के सारे जो है ना उस पार्किंग लॉट के अंदर जाकर के रहना शुरू हो जाए, ठीक है, घरों में रहना आपके लिए मुमकिन ही ना रहा, हालांकि घर बिल्कुल बराबर में है, वॉक टू, यू कैन वॉक टू योर होम्स, ठीक है, लेकिन आप नहीं जा सकते, क्या अजीब सिचुएशन होगी ना। इमेजिन करें ना कि अगर आपको इस तरह से पार्किंग लॉट में जाकर के रहना पड़ जाए और आपका घर बिल्कुल बराबर में है, कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी और कितनी अजीब गरीब सिचुएशन होगी। और आपको ये ऐसे करने वाले कौन लोग हैं, ये बाहर से कोई फोर्सेस नहीं आई हैं, कोई ब्रिटेन से लोग नहीं आए हैं, कोई चाइना से कोई लोग नहीं आए हैं, कोई इधर से लोग नहीं आए जो कि आपको मान मूर करके उनको आपको बाहर निकाल आपको रेफ्यूजी बना दिया, नो, दीज आर योर ओन किन्स, ये आपके अपने रिश्तेदार हैं, आपके अपने सगे हैं जिन्होंने आपको इस तरीके से घर छोड़ करके महसूर कर दिया है। तो अजीब गरीब सूरत हाल थी, तो सहाबा पर बड़ी तंगी के हालात गुजरे, हत्ता के दरख्तों के पत्ते चिबा करके गुजारा किया करते थे, क्योंकि खाने को भी उन्होंने बायकॉट, इसको ये असल बायकॉट था, हमने जो बायकॉट किया था ना, अभी तो हम मजाक कर रहे थे, हमने बायकॉट कर दिया पेप्सी का, तो KFC का, तो फलाने का, ये होता है बायकॉट जो कि कुरैश ने नबी अलैहिस्सलाम बनू हाशिम के खानदान का किया था। तो कुछ नहीं आता जाता था, स्मगल करके बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत जो है ना वो लोग पहुंचाते थे, तो वो गुजारा हो रहा होता था, वरना पत्ते खा रहे होते थे। तो इस मैसूरी में हजरत साद बिन अबी वकास सतान भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे, हालांकि साद बिन अबी वकास सतान जो है वो बनू हाशिम में से थे ही नहीं, ठीक है, लेकिन इतनी मोहब्बत थी और ऐसा जज्बा था कि वो भी नहीं, भी मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा, जैसे वो अजी का वाक्य है ना कि वो जिन्नों के घर के अंदर जब अजी जा रहे थे तो साथियों ने कहा कि नहीं अजी हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, जिन्नों पता नहीं जिन क्या करेंगे, तो वो भी सारे के सारे चले गए अजी के साथ, ठीक है, लेकिन वो जिन ही भाग गए वहां से तो फिर और बात है, लेकिन तो इस तरह से ये भी जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और आपने भी वहां पर बहुत तंगी और भूत के हालात बर्दाश्त किए। खुद फरमाते हैं कि एक दफा रात को मुझे सूखे चमड़े का एक टुकड़ा मिल गया, चमड़ा लेदर, ठीक है, तो लेदर जो होता है ना वो बड़ा मजे का होता है, आपने कभी खाया है? कभी उसको चबाया है? अजीब सा उसके अंदर एक टेस्ट होता है, हमने ऐसे ही पता नहीं बचपन में कभी शायद गलती से, वो वॉलेट्स होते थे वो लेदर के या कोई और चीज तरह की होती थी ना, तो उसको चबा के बड़ा मजे का होता था। तो मुझे पता है, तो वो सूखे चमड़े का एक टुकड़ा मिल गया, तो मैंने उसे पानी से धो करके साफ कर लिया, फिर आग पर भून लिया, फिर कूट कर पानी में घोल कर सत्तू की तरह से पी लिया ताकि मेरी भूख मिट सके, यानी पानी के अंदर थोड़ा सा टेस्ट आ गया लेदर का, तो समझ रहे थे कि इससे उनकी भूख मिट जाएगी, लेकिन जाहिर है लेदर के शरबत से क्या भूख मिटेगी। तो इस तरह से उन्होंने तकलीफें नबी अलैहिस्सलाम की खातिर बर्दाश्त करी, और फिर उसके बाद हिजरत का वाकया लिखा कि इनके एक छोटे भाई थे उमैर बिन अबी वकास, जैसे ये साद बिन अबी वकास उमैर बिन अबी वकास थे, तो वो भी मुसलमान हो गए थे और उन्होंने भी मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करी थी, इन्होंने भी हिजरत करी थी। जब ये हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनका तذکرہ लिखा है, उनके भाई का नहीं लिखा। तो इनको ना साद बिन वकास रज़ियल्लाहु अन्हु को साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु का भाई बना दिया, जो मवाखात आपस में बनाई थी। तो एक साद को दूसरे साद के साथ भाई बना दिया, साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ। अच्छा, दो इनकी बड़ी स्पेशल सआदतें हजरत ने फरमाई थी कि जो किसी और को नसीब नहीं हुई, सिर्फ सादत हजरत को नसीब हुई। एक तो ये कि राह इस्लाम में अल्लाह के लिए सबसे पहला खून इन्होंने बहाया, ठीक है, अपना नहीं दूसरे का, ठीक है। तो दूसरे बंदे का खून जाना सबसे पहले इन्होंने अल्लाह की खातिर। तो इनसे हो ये गया कि अगरचे कि मक्का मुकरमा में इजाजत नहीं थी लड़ाई वड़ाई की, ठीक है, और उनकी जो है ना वो जो अजियतें होती थी तो उसके ऊपर जवाब देना नबी यानी सहाबा को अलाउड नहीं था, ठीक है। लेकिन इनसे एक दफा ये चीज हो गई कि कुछ सहाबा ना एक पहाड़ की घाटी में, यानी छोटा सा कोई कैनियन टाइप की कोई चीज थी, तो वहां पर ना अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे। उस जमाने में जो नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज सिखाई हुई थी उसके मुताबिक वो कुछ नमाज नमाज पढ़ रहे होंगे, तो मुशरिकीन वहां पहुंच गए और उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या अजीब गरीब किस्म की उठक बैठक कर रहे हैं। जिस तरह नमाज का आज भी कोई एथियस्ट हो तो ऐसी मजाक उड़ाएगा कि तुम्हारी नमाज क्या है, तो उठक बैठक के खाली है। तो इसी तरह से उन्होंने भी इसी तरह से तमस्खुर करना शुरू कर दिया, तो साहबजादान को आ गया गुस्सा, ठीक है। तो वहीं पे ना करीब में एक ऊंट की हड्डी पड़ी हुई थी, मरा वो कोई ऊंट वहां पे मर गया होगा, तो उसके शाने की यानी कंधे की हड्डी जो थी ना वहां पे पड़ी, उन्होंने उठाई और दे मारी उसको ना, तो उसको जो मारी ना तो उसके तो सर फट गया और उसमें से खून निकलना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये अल्लाह के रास्ते का पहला खून जो है वो इन्होंने बहाया, तो ये इनकी इनफरादियत थी जो कि किसी और को नसीब नहीं हुई थी। लेकिन चूंकि अब ये अलाउड नहीं था तो अब इसको इन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, बस ये गलती हो गई भाई, गुस्सा आ गया था, गलती हो गई, तो बस माफी मांग ली या कह दिया होगा हो गया तो आइंदा नहीं करूंगा, तो आइंदा नहीं किया फिर इस तरह की कोई चीज। हाँ, जब जिहाद शुरू हुआ वो तो मदीना मुनव्वरा में शुरू हुआ ना, जब इस्लामिक स्टेट बन गई, निजाम बन गया, तब अल्लाह के हुक्म से फिर मुसलमानों ने काफिरों से लड़ना शुरू किया, मक्का मुकर्रमा में इसकी इजाजत नहीं थी, ठीक है। तो इससे हमें सबक मिलता है कि अभी कभी गलती हो जाए तो हम जो है वो माफी मांग लें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अच्छा, दूसरी शहादत इनको ये मिली कि इस्लाम की राह में सबसे पहला तीर भी इन्होंने चलाया। ये बहुत ही एक्सपर्ट तीर अंदाज से, जैसे तलहा दत्तान के बारे में भी हमने पीछे पढ़ा था, वो भी बड़े एक्सपर्ट तीर चलाने वाले थे। तो इन्होंने कैसे चलाया कि एक वाकया ये हुआ कि शवाल का महीना था और एक हिजरी, एक हिजरी का मतलब क्या कि जंगे बदर भी नहीं हुई थी उस वक्त, जंगे बदर 2 हिजरी में हुई थी, तो बिल्कुल फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरा। इसी में ना एक सरिया सरिया उबैदा बिन हारिस पेश आया, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने 60 आदमियों भेजा। गजवा तो वो होता है ना जिसमें नबी अलैहिस्सलाम खुद शरीक हुए, और सरिया वो होता है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने बस सहाबा को भेजा, खुद शरीक नहीं हुए। तो 60 सहाबा को भेजा, तो उन 60 में से कोई सहाबी अंसार में से नहीं था बल्कि सारे मुहाजरीन थे, ठीक है। तो सिर्फ मुहाजिर सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम ने पहली जंगी मुहिम के ऊपर रवाना किया। हो सकता है इसकी वजह ये हो कि भाई जो अंसार हैं ये तो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं और हम पहले ही उनके ऊपर बोझ बने हुए हैं वहां से हिजरत करके, ठीक है। तो अब जो है ना ये लड़ाई वड़ाई के लिए हम उनको नहीं भेजें बल्कि हम अपने ही लोग जो कि मक्का मुकरमा से आए उन्हीं को भेजें। तो नबी अलैहिस्सलाम इस तरह का ख्याल फरमाया करते थे ना, हर बंदे की अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, उसके अपनी इस्तेदाद के हिसाब से, हालात के हिसाब से हुक्म दिया करते थे। तो किसी भी अंसारी को इस सदगे में नहीं भेजा बल्कि तमाम मुहाजरीन थे। तो इसमें लड़ाई की नौबत तो नहीं आई, लेकिन फिर भी ना साहबजादा ने उन्होंने एक तीर चला दिया दुश्मन की तरफ, ठीक है। तो अब ये पहला तीर, इसका भी फिर क्रेडिट सारा का सारा साहबजादा को मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या हुआ ये सब हो सकता है वो तीर किसी को भी नहीं लगा हो, लेकिन चलाया तो ना सही इन्होंने, तो बस उनको प्रोजेक्ट मिल गया। अच्छा, फिर उसके बाद सरिये सआद बिन अबी वकास रतान, एक सरिया ऐसा भी था जो कि इन्हीं के नाम के ऊपर। तो एक दफा नबी अलैहिस्सलाम ने इनको सफेद रंग का परचम दे करके खरार की तरफ भेजा, खरार एक जगह थी उसकी तरफ भेजा, चूंकि इसके सरबराह जो साथ में वकासदार नहीं थे, तो इस सरिये का नाम जो है वो इन्हीं के साथ मंसूब हो गया, क्योंकि ये लीडर थे मुसलमानों के, और दूसरे भी सहाबा थे इसके अंदर ऑफ कोर्स, लेकिन ये उसके सरबराह थे। अच्छा, तो सआदतान के बारे में हमने जो आज की बात पढ़ी, एक तो दो सआदतें जो उनको मिली हिजरत के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम ने इनको साद बिन मुआज रतान का दीनी भाई बना दिया, और इसके बाद इस सरिय साद बिन अबी वकास और सरिय उबैदा बिन हारिस का पढ़ो। अच्छा, एक और बात कि इनके जो भाई थे उमैर बिन अबी वकास रतान, ये इनके छोटे भाई थे, जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये उम्र में काफी छोटे थे, तो जब बदर का मार का पेश आया ना, तो अब नबी अलैहिस्सलाम ने जो बाकायदा जिहाद के लिए निकलते थे तो उसमें एक एज लिमिट सेट करी हुई थी, वो क्या थी किसी को याद है? 18 साल, वो तो ड्राइविंग लाइसेंस की एज होती है। जी चले आप बताएं, 15 साल, ठीक है, तो अब ये उससे या तो कम होंगे, उसके करीब बहुत होंगे, लेकिन इनको बहुत शौक था कि मैं भी बदर के अंदर शरीक हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको देख करके इनको कहा कि नहीं, आप छोटे हैं, आप नहीं जा सकते, लेकिन इन्होंने जो है ना वो रोना धोना मचा दिया ना वहां पर, तो हजारों कतार रोने लगे, तो इनकी ये हालत देख करके नबी अलैहिस्सलाम को तरस आ गया और इनको इजाजत दे दी, ठीक है। तो अब ये वहां पे गए और वापस ही नहीं आए, यानी वहीं पे जाकर के शहीद हो गए, हजरत उमैर बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन। तो जंगे बदर के कितने 14 मुसलमान शहीद हुए थे ना जंगे बदर में, और 70 जो है वो, तो उन 14 में इनका भी नाम आता है, तो इनके वो वहां पर एक एक जो वो लगा हुआ है बड़ा सा प्लाक मार्बल का, तो उसके ऊपर इनका भी नाम लिखा हुआ होगा, उमैर बिन अबी वकास था इनका। अच्छा, फिर गजवाए उहद के अंदर इन्होंने बड़ी बहादुरी इन्होंने भी दिखाई माशाल्लाह, जब जाहिर है शुरू में तो गजवाए उहद मुसलमानों के लिए हलवा था, काफिरों को जो है वो मार भगाया, वो भागना शुरू हो गए, लेकिन गलती हो गई उन तीर अंदाजों से कि उन्होंने फिर अपनी पॉइंट को छोड़ दिया, और वो नीचे उतर करके बड़ी खैरख्वाही के साथ कि नहीं, लेट्स हेल्प एवरीवन एल्स, हम भी जा करके सबकी मदद करते हैं माल गनीमत को जमा करने के अंदर, ठीक है। अगरचे ये क्लास में शायद ये पहले बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफा दोहरा देते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो इसको भी या तो गलत इस्तेमाल करते हैं या शैतान इसको गलत इस्तेमाल करता है कि भाई सहाबा जो है ना उनको तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो जिस जगह लगाया था तो वो उन्होंने क्यों छोड़ी वो जगह, क्योंकि वो नाउज बिल्ला माल चाहते थे, माल इकट्ठा करना चाहते थे, तो उन्होंने जब देखा कि दूसरे लोग माल गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ओ हम कहीं पीछे ना रह जाएं, हमें भी माल चाहिए, वो माल की मोहब्बत में भाग गए वहां पर, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखें, बहुत आसान सा इसका जवाब है, कोई मसला ही नहीं है इसका जवाब। तो जवाब क्या है कि ये बात तो पहले से हमें पता है और तयशुदा है कि माल गनीमत जिसने उठा लिया उसका नहीं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, ठीक है। तो ये तो खाली जो है वो भाई अब हमारे यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं रही है, अब जो है वो बाकी साथियों की हम हेल्प कर लेते हैं, जाएं जा करके उनके साथ हम मिलके कामकाज कर लेते हैं, जैसे वो भी मेहनत कर रहे हैं हम भी जा करके मेहनत में शामिल हो जाते हैं, तो इस वजह से ये लोग जो है ना अपनी जगह को छोड़ करके नीचे चले गए थे। अलबत्ता जाहिर है गलती ये हुई थी कि एक तो नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि तुमने यहाँ से नहीं टलना है, वो शैतान ने भुला दिया, कल भी बात हुई थी ना कि शैतान ने भुला दिया, तो भाई शैतान तो ये काम करता रहता है कुछ ना कुछ तरीके से। और दूसरा ये कि जो इनके अमीर थे, जो नबी अलैहिस्सलाम ने वहां पर अमीर को, ऐसा तो नहीं था ना कि 50 को बैठा दिया और बस हुक्म दे के चले गए, ठीक है कि मेरा हुक्म याद रखना, नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने अपना एक नायब भी वहां पे बना करके बैठा दिया था, ठीक है। तो अब उनका उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, उनका इज्तिहाद होता, उनका फैसला होता कि भाई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो उनका ये था कि हमें नहीं जाना चाहिए, तो इनसे फिर दोहरी गलती ये हो गई थी कि अमीर की भी बात नहीं मानी, ठीक है। तो अमीर साहब वहां पे रह गए दो तीन सहाबा के साथ, तो खालिद बिन वलीद ने आकर के उनको तो फौरन ही उड़ा दिया, फिर सारा मसला शुरू हुआ उसके बाद ना, और फिर जो है नबी अलैहिस्सलाम को पीछे रिट्रीट करना पड़ा और उस गार में जाकर के इवेंचुअली पना लेनी पड़ी, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हो चुका था, काफी खून भी बहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उस दौरान फिर इन्होंने भी जो है ना नबी अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा डिफेंड किया था। तो हजरत ने फिर फरमाया था कि मुसलमानों को मुश्किल का सामना करना पड़ा जब उहद के मौके पर, तो सहाबा कराम नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत कर रहे थे, उनमें से एक हजरत साद बिन अबी वक्कास भी थे। तो आप तीर अंदाजी में बहुत माहिर थे और बड़ी महारत और सुरत के साथ तीर चला रहे थे। चुनाचे गजवा उहद में नबी अलैहिस्सलाम का दिफा करते हुए आप रजी अल्लाह तआला ने 1,000 तीर चलाए, 1,000 तीर, ठीक है। तो अपने साथ तो 1,000 तीर लेकर के नहीं गए होंगे, तो इधर से उठाया उधर से उठाया, ऐसे मिला वैसे मिला, जैसे भी मिलता गया चलाते गए चलाते गए चलाते गए। तो नबी अलैहिस्सलाम के जब तुर्क यानी अपना तरकश, जब तरकश वो जो होल्डर होता था ना उसको तरकश कहते हैं, तो जब वो खाली हो गया तो नबी अलैहिस्सलाम का भी एक तरकश था तीरों का, उसको लेकर के उसमें से ले लेकर के तीर चलाने शुरू कर दिए। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआएं करी इनके लिए, फरमाया अल्लाहुम्मा सद्दद सहमहु, कि अल्लाह इसके तीर को जो है ना, सहम कहते हैं तीर को, इसके तीर को बिल्कुल ठीक ठीक कर दे। क्या है जो आप कल आयत भी पढ़े थे, आप उधर क्यों देख रहे हैं? कल जो आयत पढ़े थे गाड़ी में बैठ करके, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूलू कौलन सदीदा, ठीक है इनको खुद याद नहीं है, निकल गया। तो कूलू कौलन सदीदा यानी ठीक ठीक बात करो, सीधी सीधी बात करो, ठीक है। तो वही फेल सद्दद सहमहु, ए अल्लाह इनके इसके तीर को जो है ना बिल्कुल ठीक निशाने के ऊपर बिठा दीजिए, व अजिब दावत, और इसकी दुआओं को कबूल कर लीजिए, ठीक है। तो साद बिन अबी वकास सतान के तीर भी जो है वो निशाने पे लग रहे थे और उनकी दुआएं भी निशाने पे लगती थी। तो हजरत जी ने फिर आगे बाकायदा लिखा है कि ये मुस्तजाब दावात सहाबी थे, ठीक है, यानी ये जो कह देते थे ना तो बस वो हो जाता था। अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम के लिए कुर्बानी दी थी ना, ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम से दुआ ली थी, तो नबी अलैहिस्सलाम की दुआ फिर इनको मुस्तजाब दावात बना बना गई। तो इसी गजवा उहद के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम को ये भी एजाजी जुमले अता फरमाए, या साद इरमी फिदा का अबी व उम्मी, ए साद तीर बरसाओ तीर मारो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर मेरे अम्मा और अब्बा कुर्बान। ये होता था बिल्कुल जब, जैसे वो आप क्या बता रहे थे हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह ने, तुमने भी हजरत जी का वो खुतबा सुना तो खुश हो गए कि जुल्फकार तुम्हारे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान, इतना अच्छा खुतबा दिया था सीरत नबी के मौजू के ऊपर। तो जब बहुत खुशी होती है ना बड़े को, तो फिर वो ऐसे दुआ देता है, ऐसा तीर चलाओ तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। क्या अच्छा, एक तीर से तीन शिकार, ये उर्दू का मुहावरा है, एक तीर से तीन शिकार। लेकिन इस वाक्य में ऐसा हुआ कि गज़वे उहद के दिन अल्लाह ताला ने हज़रत साद बिन वक़ास को ये एजाज भी अता फरमाया कि आपने एक ही तीर से तीन काफिरों को शिकार किया। वो कैसे कि तीर चलाते थे, काफिर मर जाता था ना, तो अब वो जो साइड में दूसरे काफिर होते थे उनका इतना गुस्सा आया कि दिमागी, जब बहुत गुस्सा आता है ना तो दिमाग खराब, इंसान के दिमाग काम नहीं करता। ये रूहानी बीमारियों का एक खास मसला होता है कि जब ये रूहानी बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो इंसान की अकल खराब हो जाती है। तो यही उनके साथ भी हुआ, इतना गुस्सा आया अपने साथी को मरा हुआ देख करके कि इन्होंने वो तीर उठाया और वापस चला दिया सादतान की तरफ, ठीक है, सादतान को तो वो लगा नहीं, उन्होंने वो तीर उठाया वापस काफिर की तरफ, एक और काफिर मार दिया उसी तीर से, फिर उनको और गुस्सा आया, उन्होंने फिर वापस वो तीर चला दिया, तो इन्होंने फिर वो तीर चलाया, तीसरा काफिर भी मार दिया उससे। इस तरह से एक तीर से तीन शिकार ऐसे हो गए, ठीक है। फिर उनको शायद समझ में आएगा यार ये तो उल्टा ही हो रहा है, बेहतर है कि उसको अपने पास ही रखो, ये तीर हमारे, ये बड़ा मनहूस हो गया ये वाला। अच्छा, तो मुस्तजाब दावात की बात हो चुकी थी, तो जी ने फिर इनके कुछ दो ऐसे वाकयात भी हुए कि जिसमें किसी ने ना इनको बहुत तकलीफ पहुंचाई, बल्कि जो इनके साथ दूसरे सहाबा थे उनको भी बहुत बुरा भला कहा, तो इन्होंने फिर उसके लिए बद्दुआ भी करी, ठीक है, और जो बददुआ करी थी वो ठीक जाकर के उस बंदे को लगी, और उसके साथ फिर जैसे उन्होंने उसके लिए दुआ बददुआ करी थी वैसे ही उसके साथ मामला भी हुआ। लेकिन उसने हरकत ही ऐसी करी थी कि यानी एक लिमिट होती है ना, जब तक आप जो है वो किसी के साथ खैरख्वाही करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं और बर्दाश्त भी करते रहते हैं, लेकिन समटाइम्स लिमिट्स गेट क्रॉस्ड, ठीक है, तो है लिमिट, होती है। सही है, तो इसी वजह से ये इतनी खैर ख्वाही रखने वाले, इतना प्योर दिल रखने वाले, लेकिन जब इनकी लिमिट क्रॉस हो गई तो इन्होंने भी बददुआ कर दी। ठीक है, इन्होंने तो क्या, आपको अच्छी तरीके से पता है सीरत नबी के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं, इवन नबी अलैहिस्सलाम ने भी किसी के लिए बददुआ करी थी, हालांकि रहमतुल्लिल आलमीन है। ठीक है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन। ठीक है, तो लेकिन फिर भी नबी अलैहिस्सलाम की जब लिमिट क्रॉस हो गई थी ना, आप ने भी बददुआ करी है, और नबी अलैहिस्सलाम की बददुआ तो कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। तो इस वजह से ना अल्लाह वालों की बददुआओं से भी बचना चाहिए कि भाई कहीं लिमिट क्रॉस हो। हम बहुत बर्दाश्त करते हैं, बहुत उनके अंदर तहम्मुल होता है, दूसरे लोगों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होता है, लेकिन उनकी भी लिमिट होती है, तो उसको क्रॉस कहीं हम ना कर जाएं। ठीक है, तो इसी तरह का, हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि सुबह में इतनी तैयारी भी नहीं है, तो आज जो है क्या टाइम हो गया,
11
4:11 हुआ, तो 4 मिनट आप और बर्दाश्त कर। हजरतुल वदा में शिरकत, तो 10 हिजरी में जब नबी अलैहिस्सलाम हजरतुल वदा के लिए तशरीफ ले गए, तो हजरत साद बिन अबी वक़ास भी इस काफिले में नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे। अल्लाह की शान के ये मक्का मुकरमा में जाकर बीमार हो गए। आपको बहुत परेशानी लाहिक हुई कि मैं कहीं यहाँ मक्का में ही फौत ना हो जाऊं। जब नबी अलैहिस्सलाम की आदत के लिए तशरीफ लाए तो जिंदगी से मायूस होकर अर्ज करने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैं एक मालदार आदमी हूँ लेकिन एक लड़की के सिवा मेरा कोई वारिस नहीं है, इनकी एक बेटी थी खाली उस वक्त, तो इसलिए अगर इजाजत हो तो मैं अपना 2/3 माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूं। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मेरी कोई बड़ी फैमिली है तो मेरे माल की उनको जरूरत होगी, तो बेटी की तो वैसे भी शादी का देनी होती है, तो उसके पास भी माल होना चाहिए अगर विरासत में उसको मिल रहा है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर वो 100% अपने शौहर की जिम्मेदारी में आ जाती है, जबकि बेटा जो होता है उसने खुद खिलाना पिलाना होता है, खुद कमाना होता है, तो इस वजह से शरीयत ने बेटे को 2 हिस्से विरासत का माल दिया और बेटी को 1 हिस्सा विरासत का माल दिया। ये भी नहीं किया कि नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारा तो शौहर होगा ना, नहीं, 1 हिस्सा बेटी को भी दिया। ठीक है, लेकिन बेटे को 2 हिस्सा दिया क्योंकि उसने खुद ही जो है वो सारा करना है। तो 1 मिनट, अच्छा जवाब, तो फरमाया कि मैं अल्लाह के रास्ते में बाकी सारा माल खर्च कर देता हूँ, तो नबी असल ने फरमाया कि नहीं, तुम्हें 2/3 माल खर्च करने की इजाजत नहीं है। फिर अर्ज किया कि यार रसूल सल्लम, अगर इजाजत हो तो मैं अपना आधी आधा माल खर्च कर दूं, यानी 2/3 क्या होता है, 3 हिस्से करें तो 2 हिस्से खर्च कर दूं, और आधा क्या होता है कि 2 हिस्से करें तो 1 हिस्सा खर्च करूं, जो कि 2/3 से कम होता है। तो इन्होंने नबी रसूल ने पूछा कि चले आधे का ही मुझे इजाजत दे दें, तो फरमाया कि नहीं, निस्फ भी बहुत ज्यादा है। फिर अर्ज किया कि 1/3 खर्च कर सकता हूं, तो आप सबने फरमाया कि अच्छा तुम 1/3 खर्च कर सकते हो, यानी 1/4, 1/3। ठीक है, 1/4 जो है ऑफ कोर्स वो 1/4 होगा, 1/3 मींस 1/3, लेकिन ये 1/3 भी बहुत ज्यादा है, तुम अपने मालों को मालदार, अपने वारिसों को मालदार छोड़कर जाओ, ये इससे बेहतर है कि तुम उनको तंगदस्त और कंगाल छोड़ करके जाओ और वो लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करते फिरे। ठीक है, तो आप सबसे हमने इसकी भी तरगीब दी कि अगर आपको अल्लाह ताला ने माल दिया है तो अपनी औलाद के लिए माल छोड़ करके जाए। ठीक है, लेकिन देख लें कि हर बंदे के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो एक थे फकीहुल उम्मत हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला, पढ़ने पढ़ाने वाले फकी। ठीक है, तो उनका क्या मामला था कि जब उनका इंतकाल होने लगा तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला उनके पास तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि आपने तो कुछ कमाया शमाया है नहीं, आपके घर के अंदर बेटियां हैं, आप तो लगे रहते थे इल्म की खिदमत के अंदर, तो मैं आपकी बेटियों के लिए माल का हुक्म दे देता हूँ। उनके अपने पास भी इतना माल था, बैतुल माल में भी कोई कमी नहीं थी माल की उस वक्त मुसलमानों के, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद तआला ने क्या फरमाया कि नहीं, मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाकिया सिखाई हुई है, और मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना था कि जो सूरह वाकया पढ़ता है ना रात के वक्त, तो वो उसके लिए काफी हो जाती है, उसको फिर माल वाल की कोई कमी नहीं होती है, जितना जरूरत होती है उसको मिलता रहता है। लेकिन सादतान को नबी अलैहिस्सलाम ने नसीहत करी कि नहीं, 1/3 से ज्यादा तुम खर्च ना करो, ठीक है, अल्लाह के रास्ते में, बल्कि अपनी औलादों के लिए छोड़ करके जाओ। अच्छा, इन्होंने कोई सवाल किया था कि कैन वी अज्यूम दैट ऑल मुस्तजाबुद दावात पीपल आर 100% कन्फर्म्ड जन्नती, मोस्ट प्रोबेबली एवरी वन डज दुआज टू एंटर द जन्ना।
जन्नत की दुआ करेंगे तो उसका उनकी दुआ पूरी होगी तो पहुंच जाएंगे, इसलिए लगता है।
ऑल मुस्तजाबुद दावात पीपल आर 100% कंफर्म जन्नती। मोस्ट प्रोबेबली एवरी वन डज दुआज टू एंटर द जन्ना।
नहीं,
नहीं, मुस्तजाबुद दावात के जो टर्म है ना, वो इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि वो जन्नत की दुआ करेंगे तो जन्नत में पहुंच जाएंगे। मुस्तजाबुद दावात एक बड़ी स्पेसिफिक किस्म की एक टर्म है, ठीक है। तो इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ, मेरा रब तो दुआ को जरूर से सुनता है, ठीक है। तो अब इस आयत की तफसीर करने बैठ जाए तो हमें हर बंदा ही मुस्तजाबुद दावात है, इसलिए अल्लाह ताला हर एक की दुआ को सुनता है, ठीक है। लेकिन अब हर बंदे को मुस्तजाबुद दावात नहीं कहा जाता ना, तो क्योंकि इसकी एक बड़ी स्पेसिफिक मीनिंग है, और वो मीनिंग ये है कि जैसे उसने मांगी ना, तो वैसे ही वो जाहिर भी हो जाए लोगों के सामने, उसका रिजल्ट भी नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है। ये हर बंदे के साथ नहीं होता। अल्लाह ताला बेशक हर एक की दुआ सुनते हैं, और जो जायज दुआएं होती हैं उनको किसी न किसी सूरत में या किसी न किसी वक्त पे पूरा कर भी देते हैं, ठीक है, मरने के बाद पूरा कर देते हैं वगैरह। लेकिन मुस्तजाबुद दावात इट्स दैट पर्सन जिसका कि अभी उसने मांगी, थोड़े दिन के बाद वो लोगों को नजर आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे शख्स को फिर मुस्तजाबुद दावात कहा जाता है, ठीक है। और कोई सवाल कमेंट वगैरह तो नहीं? अच्छा, सात बिन वकास के बारे में अजी ने असल में काफी तफसील फरमाई है, तो शायद इसमें इनके वाकये में तस्करे में हमें और ज्यादा टाइम लगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे खत्म कर लें। फिर इनके बाद एक रह जाएंगे मुस्तजाबुद दावात सहाबा में से, हजरत अबू उबैदा बिन, नहीं दो रह जाएंगे, अबू उबैदा बिन जलाल का और जो है वो अशरफ मुबशरा में से, लेकिन दो रह जाएंगे। तो उसके बाद पूछ रहे थे हमारे मोहम्मद नोमान भाई कि उसके बाद आपका क्या इरादा है करने का, जब वक्त आएगा तो फिर देखेंगे, या आप लोगों का मशवरा भी पता रखूँ।
नहीं नहीं
नहीं, सईद बिन जैद रजा, ये आखिरी अशरम, ठीक है। तो हम आप क्लास खत्म करते हैं, आपको दावाना अनिलहमदुल्ला
तो बदर के साहबा होते हैं।
की बारी आती है, हमने इनको भी यही कहा था कि शायद फिर बदरी साल वाले शुरू कर देंगे, देखेंगे इंशाल्लाह उसको। नमाज के लिए फिर हमें दो जगहों पे शायद सब बनानी पड़ेगी सर।